सब इस कहानी से वाकिफ हैं और हम पुराने अहदनामा में जाएंगे, फर्स्ट किंग्स पहला सलातीन 17 बाब और 8वीं आयत से लेकर जो 16वीं आयत है, ये हमारा मेन टेक्स्ट है और हम 2-3 मर्तबा में हम इसमें से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कैसे खुदा देने के वसीला से हमारी जिंदगी में मौजजात करना चाहता है। सो द मैसेज इज एम्प्टी बैरल या एम्प्टी जार, और इस पैगाम का जो एंड है, जो बॉटम लाइन है, वो ये है कि जब उस बेवा ने अपना बैरल एम्प्टी कर दिया, अपना आटे का जो मटका है वो खाली कर दिया, खुदा ने उसको भरना शुरू कर दिया। आमीन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग विच वी विल स्टडी फ्रॉम गॉड्स वर्ड टुडे। इससे पहले हमने क्या सीखा था? जो बहुत बोता है बहुत कर दे, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा कर। और उससे पहले हमने क्या सीखा था? देना देने से मुबारक। पहला सलातीन 17 बाब और हम पढ़ेंगे फर्स्ट 3 वर्सेस 8वीं 9वीं 10वीं आए।
खुदा के कौन ने लिखा है, तब खुदा का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वही रह, देख मैंने एक बेवा को वहां उठ दिया है कि तेरी परवरिश करे। उठ कर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी इसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं।
आमीन। आई एम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, बुजुर्ग खुदावंद, हम सब तेरे आगे झुकते हैं। तू हमारी जरूरत के मुआफिक और अपनी मर्जी के मुआफिक अपने कलाम को नाजिल कर और सब जाने बरकत पाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो आप इस सारे वाक्य से वाकिफ हैं। चैप्टर 16 16वां बाब क्या है? एलिया जो है वो क्रेत के नाले पर है एंड ही इज एंजॉयिंग ओवर देयर, वाटर इज देयर, फूड इज देयर। नाले के करीब वो रहता है, पानी भी मौजूद है और वहां पर खुराक उसको पहुंचाई जाती है। सो इज ईटिंग देयर, ही इज ड्रिंकिंग देयर। कुछ अरसे के बाद वो नाला जो है सूख जाता है, द ब्रुक ड्राइज अप। और अब सब जानते हैं कि ये वो टाइम है जब प्रॉमिस लैंड में कहत है, फेमन इज देयर, नो रेन, लेस फूड, और काल की जो सिचुएशन है वो प्रॉमिस लैंड में है। सो इस वाक्य से एक बात ये भी याद रखें, कई दफा प्रॉमिस लैंड में कहत भी पड़ जाता है। समटाइम्स देयर इज ऑल्सो फेमन इन द प्रॉमिस लैंड। कई दफा वादे की सरजमीन में होते हैं आप, उस जगह पे होते हैं जहां पे आपको होना चाहिए, फिर भी वहां पे क्या आ जाता है? द फेमन इज देयर। और इस सिचुएशन में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑलरेडी ये सब कुछ एलिया की दुआ की वजह से हुआ है एंड ही इज हाइडिंग ओवर देयर, वो क्रेत के नाले पे छुपा हुआ है। एंड नाउ अब उसका जो रवैया है, जब वो नाला सूख जाता है, इसका मतलब है यू हैव टू मूव, तुम्हें एक नई जगह पर जाना है। सो इस वक्त आप एलिया की जो हालत है आप उस पर गौर कर सकते हैं, He might be angry, वो गुस्से में है, ऐसे क्यों हुआ? When I am in the promised land, और जब मैं तेरा खादम हूं, why it is happening with me? और secondly, वो disappointed भी हो सकता है, मायूस भी हो सकता है, गुस्से में भी हो सकता है, वो परेशान भी हो सकता है, खुदा ने क्यों इस नाले को सूखने दिया और खुदा ने क्यों ये मेरे साथ होने दिया? ऑलरेडी आई वॉज वेल सेटल्ड डाउन हियर, मेरी जरूरत जो है वो पूरी हो रही थी और मैं दोबारा बारिश के होने के इंतजार कर रहा था, लेकिन अब नाला जो है वो सूख चुका है। और एलिया अब इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि सूनर और लेटर اٹس موونگ ٹائم. تو آٹھویں آیت میں ہم نے پڑھا تب خداون کا یہ کلام اس پر نازل ہوا, اور وہ کلام کیا تھا کہ تو اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا. سو ایک نئے اسکول میں اب اس نے جانا ہے, ایک نئی یونیورسٹی میں اس نے جانا ہے. پہلے وہ جس جگہ پہ تھا اس کا نام تھا کریت کا نالا, اب وہ جس جگہ پہ جائے گا اس جگہ کا نام کیا ہے سارپت, اور جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے سارپت کی بیوہ. یہ دو مقام ہیں جہاں پہ خداوند ایلیا کو پرپسفلی لے کے جاتا ہے, کریت کا نالا اور سارپت کی بیوہ. اور خداوند نے اس سے کہا دیکھ, نومی آیت پھر سے پڑھیں گے, اٹھ اور سارپت اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ. اس لفظ کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں, وہیں رہ. انگلش میں ہے stay there, stay there. دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کر. اور آگے لکھا ہے دسویں آیت کے آغاز میں سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا. سوزی تو یاد رکھیں خاص طور پر وہ جو ایماندار ہیں, وہ جو لوگ لیڈرشپ میں ہیں, آپ کی زندگی میں یہ دو یونیورسٹیاں ضرور آتی ہیں, یہ دو سیکھنے کے مقام آتے ہیں. کریت کا نالا جہاں پہ خدا آپ کو تھرا دیتا ہے, فراوانی بھی ہے, اور پھر ایک ٹائم یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ نالا سوکھ جاتا ہے. اور دوسرا جو سیکھنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے سارپت کی بیوہ. اور ان دونوں یونیورسٹیز میں ایلیا نے جو اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ ریت کے نالے پہ اس نے یہ سیکھا. کیا سیکھا سبق اس نے؟ آئی مسٹ ڈیپینڈ اپون گاڈ, مجھے اپنی خوراک کے لیے, پرورش کے لیے, روزمرہ کے کھانے پینے کے لیے مجھے کس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے؟ خدا پہ ڈیپینڈ کرنا. تو ایوری ڈے کوے جو ہیں اس کو خوراک پہنچاتے. اب اس کی بہت سی توجیحات ہیں, ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم 17ویں چیپٹر میں ہیں اور ہم سارپت کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو سٹڈی کریں گے. لیکن سارپت کے مقام پر خدا اس کو ایک اور سبق سکھا رہا اور وہ یہ ہے کل یور پرائڈ, کل یور پرائڈ, اپنے فخر کو مرنے دو, اپنے فخر کو مرنے دو. میں نے ایک بیوہ کو مقرر کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے. Now Elijah is one of the greatest prophets of Israel. اور اس کی پرورش اب کس نے کرنی ہے؟ بیوہ نے کرنی. تو ایلیا سوچ سکتا ہے آئی ایم اے وی آئی پی پرسن, بجائے اس کے خدا مجھے کوئی پروٹوکال دے اور خدا مجھے یہ کہ فلاں محل میں, فلاں جگہ پہ, فلاں ہوٹل میں, پی سی میں, اواری میں پہ میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے, وہاں پہ تیری پرورش ہوگی, کسی نے تیرے لیے کمرے بک کرا دیے, گو اینڈ اسٹے دیئر. تو خدا اس کے انتظام کہاں پہ کر رہا ہے؟ بالکل لو گراؤنڈ. وہاں میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا, شی از ڈرٹ پور, وہ اتنی غریب ہے کہ وہ اپنے آپ کی پرورش نہیں کر سکتی ہے, اور خدا نے اسے کہا میں نے اسے تیری پرورش کے لیے مقرر کیا ہے. سو اس جگہ پہ خدا اس کو کیا سکھا رہا ہے؟ کل یور پرائڈ, فلیش کو مرنے دیں, جسم کو مرنے دیں, فخر کو مرنے دیں, خدا پہ ڈیپینڈ کریں. اور جب تک آپ کی زندگی میں 16ویں چیپٹر نہیں آئے گا, 17ویں چیپٹر نہیں آئے گا پہلے سلاطین کا, آپ کی زندگی میں 18ویں چیپٹر نہیں آئے گا. یو گیٹ اٹ؟ اور 18ویں چیپٹر کیا ہے؟ وہ بال کے جو گاڈس تھے اور جو پروفٹس تھے ان کا مقابلہ کرتے. He defeats the enemy in chapter 18. جب تک آپ کی زندگی میں سولہواں باب نہیں آتا ہے، سترواں باب نہیں آتا ہے، یہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں ہماری زندگی میں، ہم ان جائنٹس کو فائٹ نہیں کر سکتے. اب ایلی یہاں یہ بھی سوچ سکتا ہے، خداوند سے کہہ سکتا ہے، خداوند تو نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں قوم کو تیرے پاس واپس لے کر آؤں. That I turn the heart of the people. میں اس نیشن کو تیرے پاس واپس لے کے آؤں، میں اس نیشن میں ریوائیول کو لے کر آؤں. But what is this؟ کیا میں سارپت میں جاؤں گا، ایک جینٹائل سٹی میں جاؤں گا اور وہاں ایک بیوہ کے گھر میں مجھے انتظار کرنا پڑے گا؟ What are you doing with me؟ تو مجھے استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ تو مجھے اسرائیل میں کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو مجھے منادی کے لیے کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو مجھے خدمت کے لیے کیوں نہیں بھیج رہا؟ میں تیرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس قوم کو واپس تیرے پاس لانا چاہتا ہوں. آئی ایم ڈیسپریٹ، میں جوش سے بھرا ہوا ہوں، میں تیرے لیے غیرت سے بھرا ہوا ہوں، اور میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی کالنگ کو پورا کرنا چاہتا ہوں. اینڈ گاڈ از سینگ، بیٹے جسٹ لرن دا لاسٹ لیسن، ایک آخری سبق سیکھ لیں، اپنے اندر سے اس پرائیڈ کو جانے. ڈو ایز آئی ٹیل یو ٹو ڈو، وہ کر میں جو تجھے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیٹ یور پرائیڈ ڈائی، تیرے اندر کا جو ایلیا ہے وہ مر جائے، تیرے اندر کا جو گھمنڈ ہے، فخر ہے، اسے مرنے دیں. اینڈ لیٹ اے نیو الائجہ بی بورن ان سائڈ یو. اور پھر جب تو دعا کرے گا تو آگ نازل ہو، پھر جب تو دعا کرے گا دین فائر ول کم فروم ہیون، آسمان سے اس وقت آگ نازل ہوتی ہے جب ہم 18ویں چیپٹر میں داخل ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں 16ویں چیپٹر اور 17ویں چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں 18ویں چیپٹر آتا ہے. Hallelujah. Hallelujah. When we pray, the fire comes from heaven. اور جس آگ کی میں بات کر رہا ہوں، گرچہ یہ وہ آگ ہے جو آئی اور اس کی قربانی پہ آگ ٹھہری اور آپ سارے پروسیس سے واقف ہیں، لیکن میں جس آگ کی بات کر رہا ہوں وہ بیداری کی آگ ہے. The revival of fire. اور اگر ہم ان دونوں چیپٹرز کو سمجھ جائیں کہ آگ کیسے آتی ہے، آگ اس وقت آتی ہے جب ہم خدا کے قدموں میں ٹھہر جاتے ہیں. بھاگنے سے آگ نہیں آتی ہے، ٹھہرنے سے آگ آتی ہے. اور اپنے اندر کے ایلیا کو جب ہم مرنے دیتے ہیں، گاڈ سیز گو ٹو اے ویڈو اور وہ تیری پرورش کرے گی، اینڈ یو سے اوکے فلڈ آئی ول اسٹے دیئر. اب ایک بیوہ جو ہے وہ کیا ایک نبی کی پرورش کر سکتی ہے جب آلریڈی فیمن وہاں پر موجود، اسے کیا کھانے کے لیے دے سکتے؟ سمپل فوڈ، سمپل لیونگ. لیکن خدا اس کو اندر سے صاف کر رہا ہے. اینڈ وین ایلیا واز ریڈی to serve the Lord, تو پھر 18ویں چیپٹر میں خدا اس کے وسیلہ سے آگ کو لگتا. سو اس میں لیڈرشپ کے لیے بھی بہت میسج موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے، فوکس ہے، وہ گیونگ کے تعلق سے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا نے ایک فینومنا کو یوز کیا ہے تاکہ وہ بیوہ کی بھی ضرورت کو پورا کرے اور وہ نبی کی ضرورت کو بھی پورا. اور ہم اس میں سے آج ایک بڑا اہم جو ہے وہ پرنسپل سیکھیں. سو یہاں پر ایلیا کی زندگی میں کچھ ٹیسٹ ہیں، سارپت میں چار بنیادی ٹیسٹ ہیں جو ہم ایلیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں. نمبر ون، اٹ از اے ٹیسٹ آف اے نیو پلیس. ایک نئی اسائنمنٹ ہے، ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا کام ہے جس کے لیے ایلیا نے جانا ہے. سارپت جو ہے آج کے دور میں جو لبنان کا ایک ایریا ہے وہاں پہ یہ سارپت کا شہر تھا، اور اسرائیل کے نارتھ میں ہے. اور اس کی ایک اور جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اخیاب کی جو فیگن وائف ہے جیزبل، جس کو اردو میں ہم ایزبل کہتے ہیں، وہ اسی شہر کی رہنے والی تھی، وہ سارپت کی رہنے والی تھی. اور سارپت جو ہے وہ بال کی ورشپ کا سینٹر تھا. اور یہاں پر اب ایلیا کو خدا بھیج رہا ہے ایک فیگن سٹی میں، اور وہ خدا سے میں بھی یہ بھی اعتراض کر رہا ہوگا کہ تو مجھے اپنے لوگوں میں کیوں نہیں بھیج رہا، ایک بت پرست جگہ پہ کیوں بھیج رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جو بال، جو بیل کی ورشپ ہے اس کا سینٹر ہے. لیکن اٹ واز گاڈس پلان. اور ایلیا، اب ان ورسز میں ہم ایلیا کی جو اوبیڈینس ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. خدا نے اسے حکم دیا اور دسویں آیت میں ہے، سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا. سو اس سے ایک کنکلوژن یہ نکلتا ہے، ایلیا از ویری 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 اوبیڈینٹ، الائجہ ویری 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 اوبیڈینٹ. خدا نے کہا جا، اینڈ از گوئنگ. لیکن اس کا ایک اور کنکلوژن بھی جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے، ایلیا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، اوبیڈینس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی. اگر وہ بنی اسرائیل کی طرف جاتا ہے تو اخیاب اسے مار دے گا، اور اس نے چھپنا ہے جب تک بارش نہیں ہوتی. اور اگر وہ سارپت کو نہیں جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. عزیزوں، کئی دفعہ خدا آپ کو آپ کی زندگیوں میں ایسے موڑ پہ لاتا ہے کہ اوبیڈینس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، کوئی سیکنڈ آپشن رہ نہیں جاتی ہے، میں یہ کروں یا میں یہ کروں، آپ کے سامنے ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، میں نے یہی کرنا. اینڈ دس از اے بلیسنگ فار یو، یہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ آپ اوبے بھی کرتے ہیں اور آپ برکت بھی پاتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور رستہ ہی نہیں. کئی دفعہ خدا آپ کی زندگیوں میں ایسے کام کرتا ہے، ایسے حالات کو لاتا ہے، ایسے موو کرتا ہے، دیر از نو سیکنڈ آپشن ان یور لائف. آپ کو وہی کرنا ہے جو خدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. جب ہم سارپت کے لفظ کو دیکھتے ہیں دسویں آیت میں، ہم اس کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ہیبرو میں اس کا مطلب ہے سمیلٹنگ پلیس، ایک ایسی جگہ، فرنس ہے، یہاں پر آگ کی بھٹیاں موجود تھی جہاں پہ لوہے کو بنایا جاتا تھا. آئرن کے جو اورز تھے ان کو سارپت میں جلا کر ان سے آئرن بنایا جاتا تھا، اور پھر اس سے ویپنز اور چیریٹ جو ہے وہ بنائے جاتے تھے. یہ ہے ایلیا کی نیکسٹ ڈیسٹینیشن. پہلے وہ ایک ندی کے پاس تھا، اور اب وہ ایک ایسے شہر میں گیا ہے جو ایک بھٹی کی مانند ہے. سارپت کا مطلب کیا ہے؟ آگ کی بھٹی. سب کہیں آگ کی بھٹی. نو ہی از تھنکنگ، پہلے میں کہاں پہ تھا؟ ایک ندی کے، ایک نالے کے پاس تھا. نالے سے مطلب گندا نالا نہیں، پانی کا نالا. So I was in a better place, at a better place. اب میں کہاں پہ ہوں؟ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر فرنس ہے، smelting place ہے، جلنے کی جگہ ہے. اور عزیزو یاد رکھیں، اب سب کی زندگی میں سارپت آتا ہے. جب بھی آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کے ساتھ چلنا چاہیں گے، خدا کی خدمت کریں گے، کرنا چاہیں گے، آپ کی زندگی میں سارپت آئے گا، سارپت کا مقام آئے گا، جہاں پہ آپ زندگی کی تپش کو محسوس کر سکیں، جہاں پہ آپ لائف کی ہیٹ کو محسوس کر سکیں. اور اب ایلی یہاں پہ سوچ رہا ہے، سارپت جانا ہے ایک جینٹائل سٹی میں، اور وہاں کس کو ملنا ہے؟ آل دا وے ایک عورت کو. اور یہ اس کلچر میں ईस्टर्न कल्चर में एक बड़ी मायूब बात थी कि वो एक औरत से जाकर कहे हेल्प मी। लेकिन खुदा ने उसे कहा यू हैव टू डू इट, अदरवाइज देयर इज नो हेल्प फॉर यू। और सेकेंडली वो औरत भी कैसी औरत थी, बेवा औरत। और बेवा की जो टर्म यूज की जाती है मोस्टली ओल्ड टेस्टमेंट में, दिस मीन्स डर्ट पुअर, हैव नथिंग। सो सेकेंडली पहली बात जो जेंटाइल सिटी में भेजा गया है, एक औरत के पास भेजा गया है और एक बेवा के पास भेजा गया है, और बनी इसराइल के कैसे, सॉरी सारपन के कैसे बेवा के पास जिसके पास देने के लिए भी कुछ नहीं। और जब वो शहर के दरवाजे पे पहुंचा है तो वो क्या कर रही है, लकड़ियां चुने, यानी उदे घर तो बालन भी नहीं है, सालन के तो आना नथिंग, ना सुई गैस है घर में, ना कोई पेट्रोल है, ना कोई तेल है, खाना उसने क्या बनाना है, वो लकड़ियां चुन रही है। पर कितनी को गरीब है, डर्ट पुअर, इंतहाई गरीब है। और इसके पास एलिया को भेजा गया, एंड मोर ओवर ना सिर्फ भेजा गया है बल्कि यह कहा गया है स्टे देयर, और क्या उसको हुक्म दिया, और वहीं रहना। यू कैन नॉट चेंज योर प्लेस। सारपत की बेवा के पास जाना है और वहां कोई और घर नहीं ढूंढ लेना। ये लोग बड़े चलाक होते हैं, चलो पहला स्टेशन है अगला स्टेशन को लाभ लेते हैं। स्टे देयर बड़ा वाजिया कलाम है कि वहीं पर रहना है, वहीं रह, वो ही तेरी परवरिश करे। और इसकी एक वजह यह नहीं थी कि खुदा एलिया की मदद करना चाहता है, उसकी एक वजह यह थी खुदा बेवा की मदद करना चाहता है। यू गेट इट। एलिया कहीं भी जा सकता था, मैं भी बाजार से भी खरीद लेता, मैं भी किसी और घर में भी चला जाता, वो 10-15 नबूवते कर देता, कोई 8-10 मौजजे हो जाते, कई घर उसके लिए खुल जाने थे। लेकिन खुदा ने उससे कहा तूने बेवा के घर में रहना है, इसलिए खुदा नबी की भी फिक्र करता है, खुदा बेवा की भी फिक्र करता है। खुदा अपने लोगों की भी फिक्र करता है, खुदा दूसरे लोगों को भी फिक्र करता है। और इसमें जो प्रिंसिपल है गिविंग का, वो याद रखें, अगर एलिया को खाना मिलता रहेगा तो बेवा को भी खाना मिलता रहेगा। अगर बेवा जो है वो एलिया को देती रहेगी तो खुदा बेवा को देता रहेगा। This is what God is teaching. If you are giving to God, God is giving to you. Otherwise, famine is there. Situation क्या है? काल है, कहत है, बारिश नहीं, स्टोर्स नहीं है, पानी नहीं है, अनाज नहीं है, काफी साल हो चुके हैं। आप जानते हैं 3.5 वर्षों के बाद बारिश हुई है। All of a sudden, the rain stopped. So what is the principle? कि अगर मेरा बंदा खाता रहेगा, खुदा बेवा को यह सबक सिखा रहा है, तू भी खाती रहेगी। अगर मेरा बंदा जीता रहेगा, तू भी जीती रहेगी, तेरा बेटा भी जीता रहेगा। अब सब जानते हैं साल में बाद में क्या हुआ, उसका बेटा मर गया और एलिया ने उसको जिंदा कर दिया। आमीन। जब मैं ये मैसेज बना रहा था, 2 बातें खुदा ने मुझे कही और वो मैं आपको बताने लगा। ये वो बातें हैं द लॉर्ड विच द लॉर्ड टोल्ड मी। पहली बात ये थी, जो कुछ आपके हाथ में है वो टेम्पररी है, वो आरजी है। जो कुछ आपके हाथ में है वो आरजी है, जब वही चीज आप खुदा के हाथ में दे देते हैं वो परमानेंट हो जाती है। हालेलुया। जो ब्लेसिंग आपके पास है वो टेम्पररी है, लेकिन जब वो खुदा के हाथ में दे देते हैं वो परमानेंट हो जाती है। आमीन। द सेकंड थिंग इज, मे बी जो कुछ आपके पास है, दिस इज द लास्ट थिंग, मे बी वो आखिरी आटे का पेड़ा है और वो एक ऑयल का आखिरी वो पोर्शन है जो आपके पास है। मे बी टुडे What you have in your hand is the last thing. وہ آخری چیز ہے. لیکن خدا نے اسے کہا, خدا نے کہا جب میں یہ میسج بنا رہا تھا, جب آپ اپنی لاسٹ تھنگ خدا کو دے دیتے ہیں, خدا اسے لاسٹ تھنگ بنا دیتا ہے. خدا اس کو ایسے بنا دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں. یور لاسٹ تھنگس کین بیکم لاسٹ تھنگ, کبھی نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ برکت بن سکتی ہے. آمین. لیکن راز کیا ہے؟ اٹ گوز انٹو دا ہینڈز آف گاڈ. سو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں, گاڈ از سینگ ٹو الائجہ اسٹے دیئر, دس از دا ٹیسٹ ان ہز لائف. اور اپنی زندگی میں غور کریں, ان باتوں پہ, ان دو لفظوں پہ غور کیا کریں, یہ ٹیسٹ ہیں, یہ ٹیسٹ ہیں. ایمانداروں کی زندگی کے یہ دو ٹیسٹ ہیں, نمبر ون گو اینڈ نمبر ٹو اسٹے. اپنے کان اس بات کے لیے ٹیون نہ رکھا کریں, خدا مجھے جانے کے لیے کہہ رہا ہے, خدا مجھے اسٹے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر آپ اس بنیادی ٹیسٹ کو سمجھیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بہت سی بلیسنگز کو حاصل کر سکتے. مے بی آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے, یو وانٹ ٹو لیو ان اے بیٹر پلیس, بٹ گاڈ سیز اسٹے, دین یو ہیو ٹو اسٹے. مے بی آپ کو اپنا چرچ پسند نہیں ہے, یو ڈونٹ لائک یور چرچ مے بی, یو ڈونٹ لائک یور پاسٹر مے بی, بٹ گاڈ سیز, وین گاڈ سیز اسٹے یو ہیو ٹو اسٹے. مے بی آپ کو چرچ کی ورشپ نہیں پسند ہے, مے بی آپ کو چرچ کا گانا بجانا نہیں پسند ہے, بٹ گاڈ سیز اسٹے دیئر, تم نے اسی کو سننا ہے, یو ہیو ٹو اسٹے دیئر. مے بی آپ کو اپنی جاب نہیں پسند ہے اور آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, اف گاڈ از سیئنگ اسٹے اسٹے دیئر. کیا کہہ رہا ہے خدا آپ کو موو کرنے کے لیے, اسٹے کرنے کے. مے بی آپ امریکہ میں جانا چاہتے ہیں, اسائلم لینا چاہتے ہیں, یورپ میں, انگلینڈ میں جانا چاہتے ہیں, آسٹریلیا بھاگنا چاہتے ہیں. مے بی گاڈ از سیئنگ اسٹے انٹل آئی ٹیل یو ٹو موو. سو وین یو اسٹے دیر از بلیسنگ فار یو. خدا نے ایلیا سے کہا اس بیوہ کے گھر میں ٹھہرا, اسٹے دیر, ٹھہرا رہے, اسٹے دیر, وہی رکنا, وہی ٹھہرنا, وہی رہ, کیونکہ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ تیری پرورش کرے. سو انلیس گاڈ سیز ٹو یو موو یو اسٹے. جاب پہ ہیں, جس گھر میں ہیں, جس جگہ پہ ہیں, جس چرچ پہ ہیں, جس ملک میں ہیں, اسٹے کر. مے بی وہاں پہ پرابلمز ہیں لیکن خدا آپ کے لیے رستے نکال دے. دوسرا جو ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں ایلیا کی زندگی میں, اس دا ٹیسٹ آف ٹائمنگ. خدا نے اسے کہا جا, اور اگلی آیت میں کیا لکھا, وہ اٹھا اور چل, وہ اٹھ کر چل. اب خدا کی ٹائمنگ کو دیکھیں, ایلیا جو ہے وہ دروازہ شہر کے پھاٹک پہ پہنچتا ہے, وہ شہر کی طرف جاتا ہے. دسویں آیت پڑھیں ذرا.
سو اٹھ کر ساقط کو گیا, اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے.
ہاں جی بس. سو اٹس دا ٹیسٹ آف ٹائمنگ. ایلیا جو ہے وہ پھاٹک پہ پہنچا ہے, اب اس نے کس کو تلاش کرنا ہے؟ بیوہ کو تلاش کر. Now there might be many widows over there, لیکن کسی کے یہ ٹیگ نہیں لگا ہوا, this is the widow کہ جس کو میں نے کمینڈ کیا ہے کہ وہ ایلیا کی پرورش کرے. ایلیا کو اس کو ڈھونڈنا ہے. لیکن خدا کی ٹائمنگ کیسی ہے, ایلیا بھی شہر کے پھاٹک پر ہے اور بیوہ بھی وہاں پر موجود ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے, لکڑیاں چھوڑ. So when you move in God's timing, खुदा आपके लिए आपके जो circumstances हैं उनको arrange कर देता है. Now it's a hopeless situation. कहत है शर्बत को वो क्या है और उसे वहां पे एक औरत नजर आई है जो लकड़ियां चुन रही है. Now he's thinking, maybe she is the person. शायद ये वही है जिसके लिए खुदा ने मुझे कहा है कि उसने मेरे लिए उसको मुकरर किया है. सो लेट्स टेस्ट. आए मैं देखूं कि यही वो है या नहीं है. आई हैव टू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन. आई हैव टू फाइंड दैट पर्सन. अब सिचुएशन ये है कि एक बेवा औरत है, वो लकड़ियां चुन रही है एंड द प्रॉफिट इज देयर. उसने ये नहीं कहा लेट मी हेल्प यू. उसने ये नहीं कहा बाजी मैं आपकी मदद करता हूं, मैं लकड़ियां आपको चुन देता हूं. नो, ही वॉन्टेड टू टेस्ट. और उसने उससे कहा यू हेल्प मी एंड यू गिव मी अ जग ऑफ वॉटर. तू मेरे लिए पानी खुला. ये वो उस बेवा को वो टेस्ट कर रहा है कि क्या यही वो औरत है जिसके लिए खुदा ने मुझे जिसके पास भेजा है और खुदा ने मुकरर किया कि वो मेरी परवरिश करेगी. तो पहला टेस्ट क्या है, उसे पानी मांगे. सो मैनी मैनी पीपल, हमारे जो पाकिस्तान की चर्च की साइकी है, हम ये चाहते हैं चर्च हमारी मदद करे, चर्च हमारी मदद करे. एंड इफ वी डोंट हेल्प द चर्च द पीपल, तो पीपल थिंक द लीडर्स आर वेरी हार्टलेस, दे हैव स्टोनी हार्ट्स. फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाएंगी. फलां पादरी अपने जज के लोगों की मदद नहीं करता. और मे बी एलिया को यह डर ना हो कि सुबह को फेसबुक पे तस्वीरें लग जाए एलिया बजाय एक बेवा की मदद करने के एलिया से बेवा से पानी मांग रहा है और बेवा से खाने पीने के लिए मांग रहा है. When she is already dead poor. लेकिन खुदा ने ऐसे नहीं दिया. आप चर्च से मांगे नहीं, आप खुदा से मांगे, आप खुदा को दें और खुदा आपको वापस दे. This is why our nation is poor. हम बीज नहीं बोते हैं, हम मांगने वाले बन चुके, बैगर्स हैं. 90% ऑफ द चर्च इन पाकिस्तान बैगर बन चुका है, बेकारी चर्च है. इधर से मांग, उधर से मांग, बाहर से मांग, अंदर से मांग. खुदा से मांगे, खुदा को दें, खुदा मल्टीप्लाई करे. जब आप खुदा को कुछ नहीं दे रहे हैं, खुदा आपके लिए मल्टीप्लाई क्या करेगा. और जब तक हम मांगते रहेंगे, हम कभी भी उस बिब्लिकल प्रॉस्पेरिटी को हासिल नहीं करेंगे जो खुदा हमें देना चाहता है. एंड दैट इज अबंडेंस. हां जी, पढ़े जरा दसवीं आयत का नीचे वाला हिस्सा. सोचने
से पुकार कर कहा जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं.
हां जी, तो उसने ये नहीं पूछा, उसका हाल चाल नहीं पूछा, उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा, उसका कोई मैरिटल स्टेटस नहीं पूछा. मे बी उस कल्चर के ड्रेस से उसे पता चल रहा है कि ये बेवा है. एक कमेंट्री में ये पढ़ रहा था कि उस वक्त जो बेवा है वो एक खास किस्म का वो ड्रेस पहनती थी. बहरहाल उसने पुकार कर कहा. कैसे कहा? पुकार कर. सो दैट शी वोंट मिस इट. हल्की सी आवाज से नहीं कहा बहन जी जरा पानी दे देना. उसने पुकार कर कहा जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे के मैं पीऊं. और कहर के दौर में यू अंडरस्टैंड पानी जो है बहुत प्रेशियस है, सोने चांदी से कीमती है पानी. खासतौर पर ओल्डन टाइम्स में 3000 साल पुरानी बात है. कोई स्टोर नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कोई पानी के स्टोरेज का इंतजाम नहीं है. और कहत पड़ा हुआ है, देर इज नो रेन, देर इज नो वॉटर कमिंग फ्रॉम हेवन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी सोने और चांदी से कीमती। पानी की कीमत उस वक्त जान की कीमत है, पानी की कीमत जिंदगी की कीमत है, पानी की कीमत जान की कीमत है। मे बी वो इस बेवा से 100 रुपया मांगता तो वो देना उसके लिए इजी होता मे बी, लेकिन पानी देना क्या था, मुश्किल। देर वॉज हार्डली एनी वॉटर इन दैट लैंड, इसलिए तो वो भागा हुआ वहां पे, नाले भी सूख चुके हैं। और उसने उस औरत से क्या मांगा, गिव मी सम वॉटर, मुझे थोड़ा सा पानी दे। अब वो टेस्ट कर रहा है कि अगर ये पानी देने के लिए तैयार है, मे बी उस पानी की जो वैल्यू है, उस एक गिलास की जो वैल्यू है मे बी वो 10,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जिंदगी की कीमत है, सर्वाइवल का मसला है, नो वॉटर नो लाइफ। और अगर ये औरत मुझे पानी देने के लिए तैयार है, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रही है, कोई बहस नहीं कर रही है, मे बी शी इज द पर्सन जिसको खुदा ने मेरे लिए अपॉइंट किया है, जिसके वसीले मुझे बरकत देगा। हाँ जी आगे पढ़े, 11वीं आयत।
और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदा तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर एक आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं दो एक लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं।
अब अभी जब वो जा रही है तो इलाइजा पुट्स द सेकंड रिक्वेस्ट, दूसरी रिक्वेस्ट भी कर देता, और वो क्या है, मेरे लिए जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती हैं। नाउ ही अंडरस्टैंड्स, जो पानी देने के लिए विलिंग है, अगर इसके पास आटा है तो ये रोटी देने के लिए भी विलिंग है। और उस औरत ने अपनी सिचुएशन उसके आगे रख दी, हमारे पास कितना आटा है जी, मुट्ठी पर आटा, मुट्ठी पर आटा, कितना आटा है मुट्ठी पर आटा, और थोड़ा सा तेल कुप्पी में है, और देख ये मैं लकड़ियां चुन रही हूं ताकि हम आज ये खाना बनाएं, और उसके बाद वी हैव नथिंग टू ईट, वी डोंट नो अबाउट टुमारो, और उसकी लैंग्वेज क्या है, हम उसे खाएं फिर मर जाएं, हम उसे खाएं फिर मर जाएं। सो अगेन वी सी नो कंपैशन इन द हार्ट ऑफ इलाइजा। इलाइजा ने ये नहीं कहा चल रहने दे, पानी ले या रोटी रहने दे, ये तेरे और तेरे बेटे के लिए कहा, उसने कहा वो भी ले या, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हेन शी इज गोइंग टू सर्व द टेबल बिफोर द मैन ऑफ गॉड। जब ये बेवा खुदा के बंदे के लिए दस्तरखान बिछा देगी, खुदा इस बेवा के लिए दस्तरखान बिछा देगा। He knows the principle, और वो उसको लाने देता है ताकि वो लाए, मैं भी उसे खाऊं और इस बेवा के लिए भी बरकत और मौजज़ा जारी हो जाए। So apparently एलिया से क्या कह रहा है, empty your barrel, एक मुट्ठी आटा है पका दे, जब वो एक मुट्ठी आटा जो पका देगी तो मटका खाली हो जाए, द बैरल इज गोइंग टू बी एम्प्टी, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है जार में, अगर वो उसे रोटी बना लेगी तो कुप्पी खाली हो जाएगी। सो प्रॉफिट इज सेइंग अपेरेंटली टू हर, एम्प्टी योर बैरल, एम्प्टी योर जग, जो कुछ तेरे पास है तो उसे खाली कर दे। गिव इट टू गॉड। और आगे जब आप 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड एलाइजा इज नॉट हार्टलेस, वो कंपैशन से खाली नहीं है, वो ही अंडरस्टैंड्स गॉड विल डू अ मिरेकल फॉर हर। सो आज इस वाक्य से जो बात हम सामने रखेंगे वो ये है, इफ यू आर लिविंग इन सारपत ज़रफ़त में, अगर आप रह रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी सारपत में है, और सारपत का मतलब क्या है, भट्टी, आग की भट्टी, न चैन है न सुकून है न आराम है, मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है, कर्ज है, गुर्बत है, बीमारी है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, वट एवर इज देयर, सारपत में अगर आप रह रहे हैं और आप प्रॉमिस लैंड की बरकत को हासिल करना चाहते हैं, एम्प्टी योर बैरल, एम्प्टी योर जग, और खुदा आपके सारपत को फरावानी में बदल दे। God is no man that he is going to lie. So Elijah एक lesson इस बेवा को सिखा रहा। ये बेवा जो है ये यहूदी नहीं है, कौन है ये, जेंटाइल है, गैर कौमों में से, बाल की वर्शिप करती है, और Elijah is going to teach her a lesson, और वो पहला lesson ये है, you can depend on the God of Elijah। Prophet उसे क्या सबक दे रहा है, तू एलिया के खुदा पर भरोसा कर सकती है, तू इसराइल के खुदा पर भरोसा कर सकती है, तू उस खुदा पर भरोसा कर सकती है जो आसमानों पर मौजूद है, you can trust The God of Israel। तो उस खुदा पर भरोसा कर सकती है जिसने सलीब पर अपनी जान तेरे लिए दी है। तो सरबत में है, फायरी फर्नेस में है, मुसीबत में है, मुश्किल में है, होपलेस कंडीशन है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, जिसका मे भी दुनियावी तौर पर कोई वे आउट नहीं है, बट यू कैन ट्रस्ट इन यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा खुदा, बनी इसराइल का खुदा, खुदाओं का खुदा, बादशाहों का बादशाह, यहोवा खुदा, जिंदा खुदा, यहोवा खुदा, तू उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हालेलुया, यू ट्रस्ट नो मैन, यू ट्रस्ट नो सिचुएशन, यू ट्रस्ट इन द लिविंग गॉड, यहोवा खुदा पर, जिसका मैं नबी हूं, एलिया सिंह, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते, आमीन। और अगर आज आप जिंदा यहोवा खुदा पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और उसके इकलौते बेटे यीशु नासरी पर, जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दे दी, आज ही आपकी जिंदगी का सरपद खत्म हो जाए, आज ही आपकी जिंदगी में मौत से जारी हो जाएंगे, आप माजी में जिन मौतों का इंतजार कर रहे हैं, आज वो आपके लिए वो दिन है कि वही यहोवा खुदा जिसने सारपत की बेवा के उस बैरल को भर दिया, उस जार को भर दिया, उसके बेटे को जिंदा कर दिया, आज आपके मरे हुए हालात जिंदा हो जाएंगे, आमीन। If you believe it, you receive it. Amen. मौत से हो चुके हैं। I tell you in the spirit, miracles have taken place. मौत से हो चुके हैं। और इससे पहले कि आप घर पहुंचे, कई मौत से आपकी जिंदगी में जारी हो चुके हैं, आपके हालात में जारी। आए सब खुदावंद के लिए अपने हाथ खोल रहे, यहोवा खुदा को मुबारक है, शुक्रगुजारी करें अपने मौजे के लिए, यू हैव ब्लेस्ड मी, यू हैव हील्ड मी, यू हैव गिवन आंसर टू माय प्रेयर्स, यू हैव डन मिरेकल्स इन माय लाइफ, तूने मेरे मटके को भर दिया है, तूने मेरे जाल को भर दिया है, तूने मेरे बदन को छू दिया है, तेल जारी हो गया है, चश्मे बहने शुरू हो गए हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, शुगर जा रही है, दिल की बीमारियां दूर हो रही है, गुर्दे शिफा पा रहे हैं, बरकतें जारी हो रही है, फाइनेंशियल कर्सेस ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि एलिया का खुदा हमारे दरमियान, खुदा हमारे दरमियान, प्रेज गॉड हालेलुया। दिस इज द लेसन Elijah is teaching that woman, you can trust on my God. तू मेरे खुदा पर भरोसा रख सकती, तू यहोवा खुदा पर भरोसा रख सकती। नंबर दो, वो उस बेवा को ये लेसन दे रहा है, अगर तू बोएगी नहीं तू काटेगी कैसे? If you don't sow, how will you reap? So, मैं तुझे इसलिए नहीं कह रहा कि पहले मुझे दे कि मुझे जरूरत है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले बीज बो दे, बीज बो दे, फिर तू फसल काटती रहेगी। अगर तू बीज ही खा जाएगी तू फसल क्या काटेगी? वट एवर यू हैव, थोड़ा है थोड़ा बो दे, ज्यादा है ज्यादा बो दे, जितना बोना है उतना बो दे। और एक बाइबल स्कॉलर इस वाक्य के बारे में लिखते हैं कि वो मटका कभी फुल नहीं हुआ और वो ऑयल का जार कभी फुल नहीं हुआ जब तक एलिया वहां पे रहा, लेकिन वो मटका कभी खाली भी नहीं हुआ। एवरी डे जब उन्हें आटे की जरूरत पड़ती आटा वहां पर मौजूद, वो खाली भी नहीं हुआ, और जब भी उन्हें तेल की जरूरत पड़ती वो तेल वहां पर मौजूद था, वो जग भी खाली नहीं। Hallelujah. Maybe you can't see it. Maybe आपको बोरियों की बोरियां नहीं मिल जाएंगी। Maybe you can't see it. But the hand of God is there. खुदा का हाथ वहां मौजूद है। आप जिस हाथ से खुदा को देते हैं वही हाथ, खुदा का वही हाथ फिर आपकी मदद करना शुरू कर। God's invisible hand is there. जब आप अपने मटके को खाली करने के लिए, अपने जाल खून देने के लिए तैयार हैं, खुदा का invisible hand उन मटकों को छुएगा, उस जाल को छुएगा और वो खत्म नहीं होंगे। आपकी नीड्स को छुएगा और वो नीड्स जाती रहेंगी। खुदा का वो invisible hand आपके बदनों को छुएगा और आप शिफा पाते चले जाएंगे। आमीन। सो एलिया इज गिविंग हर द सेकंड लेसन, अगर तू बोएगी नहीं तू काटेगी कहां से? अब एलिया उसको तीसरा सबक ये सिखा रहा है, जो तेरे पास है वो तो खत्म होने वाला, तूने कल भी मरना है, अगर तू आज नहीं कहेगी आज भी मर जाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। Sooner or later you are going to die. Apparently, human point of view से वो तो पहले ही खत्म है। Unless some miracle happens, आटा तो खत्म है और वो ऑयल तो खत्म है, सिर्फ एक दिन की सर्विंग बाकी, कल तो वो वैसे ही खत्म हो जाना। तो जो कुछ तेरे पास है वो एक दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन जब वो खुदा को तू दे देगी, वो बीज तू बो देगी, वो ब्लेसिंग तेरी जिंदगी में जारी रहेगी, वो चश्मे तेरी जिंदगी से जारी हो जाएंगे। तो मैसेज क्या खुदा एलिया हमें क्या मैसेज दे रहे इस वाक्य से? यू वोंट डाई व्हेन यू गिव टू गॉड। खुदा को देने से हम मर नहीं जाएंगे। अब क्यों देने से घबराते हैं? अब अपने बैलेंस खाली करने से क्यों घबराते हैं? आप अपने जग खाली करने से क्यों घबराते हैं? आप अपनी जेबें खाली करने से क्यों घबराते हैं? आप अपने बटवे खाली करने से क्यों घबराते हैं? यू वोंट डाई व्हेन यू गिव टू गॉड। गॉड विल मल्टीप्लाई। आमीन। अगर आप सारपत में हैं, एंड इफ यू नीड अ मिरेकल, एलिया ने आपके सामने वो तरीके का रख दिया है कि हम कैसे इस मौजजे को हासिल कर सकते हैं. गिव, गिव व्हाट यू कैन नॉट गिव, व्हाट यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव, वो दें जो आप नहीं दे सकते हैं. यानी आपके लिए मुश्किल है. अगर आप इस बेवा की जगह पे खड़े हों, लुक एट द हार्ट ऑफ दैट विडो. जैसे मैंने पहले कहा, पानी की कीमत जिंदगी की कीमत है. और ये जो मुट्ठी भर आटा है और जो थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, ये जिंदगी की कीमत है. दे आर वर्थ लाइफ. जैसे कि किसी से कहे किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, 50 लाख रुपया चाहिए. At that moment, your life is worth 50 lakh rupees. जिंदगी की कीमत. और इसी तरह ये बैरल जो है, ये आटा जो है, ये पानी जो है, जिंदगी की कीमत है. और आप उस बेवा के ईमान को देखें और आप उसके हार्ट को देखें, she is willing to give. और जब वो देने के लिए तैयार है तो खुदा भी उसको देने के लिए तैयार. हाँ जी, आगे पढ़ेंगे 13वीं और 14वीं आयत.
और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर.
हाँ जी, एक मिनट जरा. तीसरा जो टेस्ट है यहां पे, दिस इज द टेस्ट ऑफ फेथ. दूसरा जो हम टेस्ट देख रहे, टेस्ट ऑफ टाइमिंग है. तीसरा जो टेस्ट है एलिय्याह की जिंदगी में, इज द टेस्ट ऑफ फेथ. I am going there. How is going God is going to help me. हाँ जी, दोबारा पढ़ें.
और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर.
हाँ जी, अब उनकी गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू है. पहली दफा मिले एक दूसरे को. He is a stranger over there and she is a stranger for him. और एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर. इब्लीस का जो सबसे बड़ा हमला आपके खिलाफ है, फियर, खौफ. और फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा, मत डर. मैनी टाइम्स आप बाइबल में पढ़ेंगे, खुदावंद अपने लोगों से कहता है, मत डर. खुदा ने जोशुआ से कहा, मत डर, फियर नॉट, फियर नॉट. यानी दुश्मन आपके खिलाफ जो सबसे बड़े तीर भेजते हैं वो ये है, खौफ के तीर है. ये खौफ ज्यादा होता है, अपना ईमान लूज कर दे. तो इलाइजा उसे कहता है, मत डर, फियर नॉट. यानी वो उसकी लाइफ में फियर दे सकता है, वो देने से घबरा रही होगी मे बी, कि अगर हम इसे दे देंगे तो हमारा क्या बनेगा. सो एलिय्याह सेइंग, फियर नॉट, मत डर. हां जी, आगे पढ़े. और जैसा कहती है कर, पर पहले पहले किसको देना, मुझे दे. द सर्वेंट ऑफ गॉड फॉर द वर्क ऑफ गॉड, पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास. इसलिए नहीं कि एलिय्याह बहुत भूखा है. मे बी ही नोज हाउ टू फास्ट, ही इज अ मैन ऑफ फास्टिंग. एलिय्याह का जो टाइटल दिया गया वो ये है कि ही इज अ माउंटेन मैन, पहाड़ों पे रहने वाला शख्स था. ही नोज हाउ टू फास्ट फॉर वीक्स एंड वीक्स. लेकिन हाँ जी, पढ़े जरा. पहले
पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना.
हाँ जी, उसके बाद, फर्स्ट गिव मी देन टेक इट फॉर योरसेल्फ. क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, एलिय्याह को क्या सिखा रहा है, बीज बोएगी फसल काटे. हाँ जी, आगे वजह, आगे वजह बता रहे हैं 14वीं आयत.
क्योंकि खुदावंत इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंत जमीन पर मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुप्पा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावत के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई।
आमीन। सो ऑलरेडी हम इन बातों को डिस्कस कर चुके हैं। 14वीं आयत, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक, यानी उस ब्लेसिंग की हद भी मुकर्रर कर दी, उस मौजजे की लिमिट भी मुकर्रर, जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। वो जितना मैयर था वो उतना ही रहता। सो 15वीं आयत, सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया। और क्या किया, यू अंडरस्टैंड, और फिर क्या हुआ, और ये और वो, और ये और वो, यानी एलिया भी खाता रहा, वो भी खाती रही, और उसका कुंभा बहुत दिनों तक खाता, और रिश्तेदार भी आ गए। वो तो बेवा तो अकेली थी और उसका एक बेटा था, लेकिन कुंभा भी फिर साथ मिल गया। भैन भरावान भी पता चल गया थे मौजे जारी हो गए, जिते हुए दवा दे उथे मौजे होंगे ने, कुंभा भी जो है वो चाचे बाबे भी जमा हो गए, ऐसी भी ऐसे ना लिए गए हैं, और वो बहुत दिनों तक। आमीन। सो जब आप अपना बैरल खाली कर देते हैं खुदावंद की हजूर में, जब इस शरबत में आप अपना मटका खुदावंद के जोर में ढेल देते हैं, खुदा के लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा, आपका कुंभा भी बरकत पाता रहेगा, यानी आपके वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाते रहेंगे। आमीन। सो द लास्ट थिंग इज, इट्स द टेस्ट ऑफ ओबीडियंस। एलिया के ईमान का भी टेस्ट है और उस जो सारपत की बेवा है उसके ईमान का भी टेस्ट। एलिया ने वो किया जो खुदा ने उसे करने के लिए कहा, और उस सारपत की बेवा ने वो किया जो एलिया ने उसे करने के लिए कहा, और रिजल्ट क्या है, एंड दे बोथ सर्वाइव्ड द फेमन एंड दे बोथ वर blessed. Amen. So now the conclusion is, the bottom line is, give God your best. और जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो आप afford नहीं कर सकते हैं खुदा को देना, give it to God. और यही साल 2017 आपके लिए बड़े बड़े मौजजों का साल हो जाए, बड़ी बड़ी रिहाइयों के साल हो जाए, और आप माजी में जिन मेरेकल्स का वेट कर रहे थे वो मौजे आज आपकी जिंदगी में जारी हो जाए, और फ्यूचर में जो जो कुछ खुदा आपकी जिंदगी में लाना चाहता है, जो प्रोविजंस, जो पोजीशंस, जो मेरेकल्स, जो फेवर खुदा आपकी जिंदगियों में लाना चाहता है वो जारी हो जाए। अज़ीज़ो याद रखें, फॉर द पीपल ऑफ गॉड अबंडेंस इज मच मोर डेंजरस देन लैक। जब हमारे पास ज्यादा हो जाता है हम खुदा से पीछे हट जाते हैं। व्हेन वी हैव लेस वी कीप ऑन प्रेइंग, वी कीप ऑन कमिंग टू गॉड, वी कीप ऑन कमिंग नियर टू गॉड। और इसलिए मत्ती 19 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, खुदा ने कहा कि दौलतमंद का आसमान की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल, इसलिए नहीं कि मनी इज बैड, पैसे का ज्यादा होना बैड नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है, वी स्टार्ट सर्विंग मनी, वी स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन मनी रादर देन डिपेंडिंग अपॉन गॉड। So Elijah needed the widow and the widow needed the prophet. एलिया को खुदा ने कहा तुझे बेवा की जरूरत है जो तेरी मदद करेगी क्योंकि मैंने उसको हुक्म दिया, और बेवा को एलिया की जरूरत थी कि अगर वो खुदा को देगी, खुदा के बंदे को देगी, तो खुदा की बरकत जो है वो उसकी जिंदगी में जारी रहे। सो इस सारे मौजे का और इस सारे वाक्य का जो कंक्लूजन है वो ये है, व्हाट गॉड कैन डू विद एन एम्प्टी बैरल। एक खाली मटके से खुदा क्या कुछ कर सकता। जब हम अपने मटके खुदा के लिए खाली करने के लिए तैयार हैं, टू गिव आवर बेस्ट, टू गिव आवर सैक्रिफिशियल, अपना बेहतरीन खुदा को देने के लिए तैयार, खुदा उस मटके को कैसे भर सकता। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, चीजों की बात नहीं है। इफ यू हैव नथिंग टू गिव, गिव योरसेल्फ। पैसे की बात नहीं है, नहीं है पैसा कोई बात नहीं, अपना आप खुदा को, सर्व गॉड, खुदा की खिदमत करें, यीशु की गवाही दें, चर्च में आए, सेटिंग करनी है, सफाई करनी है, सर्व गॉड, क्वायर में आए, सर्व गॉड, चर्च की सफाई करनी है, सर्व गॉड, आपके मटके भरते चले जाए। आप खुदा के घर में आएंगे काम करने के लिए, खुदा आपके घर में जाएगा काम करने के लिए। हालेलुया। जो हम काम करते हैं वो थोड़े हैं, और जो खुदा हमारे घरों में काम करेगा मौजे जारी हो जाएंगे। सर्व गॉड, चाहे व्हाट एवर यू कैन डू, थ्रू प्रेयर सर्व गॉड, थ्रू गिविंग सर्व गॉड, और बेशुमार वॉलंटियर एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आप चर्च को सर्व कर सकते हैं, आप टाइम निकाल सकते हैं ऑफिस में बैठने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए और खुदा के काम करने के लिए। योर चर्च मैनेजमेंट नोज वेयर दे कैन यूज यू। सर्व गॉड। मे बी पूरे हफ्ते में आप कई ऐसे घंटे निकाल सकते हैं जिसमें आप खुदा को सर्व कर सकते। सोते नहीं रहे घर में, फेसबुक में ना टाइम जाया करते रहे, यू कैन डू समथिंग फॉर, आपके घर में बरकतें जारी हो जाएं, आपके मटके भरने शुरू हो जाएंगे, आपके तेल की कुपियां भरनी शुरू हो जाएंगी, आपकी हड्डियां चलनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। व्हेन यू सर्व गॉड, आपके ऑर्गन शिफा पाना शुरू कर दें। आमीन। आपकी कमजोरियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। गॉड विल ब्लेस। किसी ओहदे का ना इंतजार करें, किसी ऑर्डिनेशन का वेट ना करें, किसी और चीज का वेट ना करें। इफ यू वॉन्ट टू सर्व गॉड, स्टार्ट नाउ। आमीन। और इन्हीं दो बातों के साथ हम इस मैसेज को कंक्लूड करेंगे। एम्प्टी योर बैरल, एम्प्टी योर बैरल्स बिफोर गॉड। नंबर दो, सर्व गॉड, अपने आप को पेश करें खुदा के लिए। मसीह ने आपके लिए अपने आप को पेश कर दिया सलीब पर। यू हैव एन ईजी टास्क टू डू। ये टाइम वापस नहीं आएगा, कोई साल जो दिन गुजर जाता है, इट वोंट कम बैक। उम्रें वापस नहीं आती हैं। नाउ इज द टाइम टू सर्व गॉड। आमीन। आई एम दुआ करता हूं। खुदावन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड।